अच्छा है क्योंकि हम समझ पाएंगे कि हम है कौन। देखिए जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हम है कौन, हम हमेशा बेवकूफ। अरे हरे कृष्ण, वेलकम। जब तक हम ये समझेंगे नहीं हम है कौन, तब तक हम बेवकूफ बने रहेंगे। क्या बने रहेंगे? बेवकूफ। और माया हमको बेवकूफ बनाती रहेगी। तो इसलिए बहुत बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत इंस्पिरेशनल श्लोक है। हम समझें कि हम कौन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सुनते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन ये आत्मा का पूर्ण परिचय नहीं है। तो पूर्ण परिचय आत्मा का भगवान के संबंध में है। तो भगवान के संबंध में हम आत्मा का परिचय आज देखेंगे। सबके पास श्लोक है, फोन होगा, एक फोन यूज कर सकते हैं। भगवद गीता 15वां अध्याय श्लोक क्रमांक 7।
ममैवांशो जीवलोके
जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ममैवांशो जीवलोके
जीवभूतः सनातनः
मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ममैवांशो जीवलोके
जीवभूतः सनातनः
मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि
प्रकृतिस्थानि कर्षति
बोलिए, बोलना चाहते।
ममैवांशो जीवलोके
जीवभूतः सनातनः
मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि
प्रकृतिस्थानि कर्षति श्लोकों को देखिए, शब्द को देखिए। मम एव अंशो, मेरे ही अंश हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? ही का मतलब है किसी और के अंश नहीं है। ये समझ में आ गया? जीव लोके, इस बद्ध जगत में, भौतिक जगत में। जीव भूत, देखिए दो प्रकार के जीव हैं, एक है जीव भूत और एक होता है ब्रह्म भूत। तो जीव भूत मतलब जो बद्ध जीव है, जो इस शरीर से आसक्त है, और ब्रह्म भूत मतलब जो मुक्त जीव है। तो यहां कह रहे हैं जीव लोक के, इस भौतिक जगत में जीव भूत सनातना, जितने भी बद्ध जीव हैं वो सब मेरे मेरे ही सनातन अंश हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? पहले मनस, और क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मन षष्ठाणि इंद्रियाणि, मन को लेकर के छह इंद्रियों को एक श्रृंखला, जैसे बेड़ी, बेड़ी समझते हैं आप लोग, श्रृंखला मतलब तो बेड़ी, जंजीर, उस तरह से इन इंद्रियों और मन को ढो रहे हैं। कहां ढो रहे हैं? कह रहे हैं प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति में स्थित होकर, इस भौतिक जगत में स्थित होकर। अच्छा, छह इंद्रिय कौन कौन सी हैं जरा समझ लेते हैं। चाहिए पांच ज्ञान इंद्रिया और एक मन, यानी कि आंख, कान, जिह्वा, नासिका और त्वचा। ये पांच ज्ञान इंद्रिया हैं और मन। अब यह क्यों कह रहे हैं, खींच रहे हैं? क्योंकि आप जानते हो ये जीव के कंट्रोल में होती नहीं है। ये हर जो इंद्रिय है वह है अपने भोग की तरफ भागती रहती है, तो इस कारण से हमको संघर्ष करना पड़ता है। समझ में आ रहा ना क्यों संघर्ष करना पड़ता? आवाज आ रहा है? ठीक से? ठीक। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग अब आगे इसका पढ़ते हैं। अनुवाद समझ में आ रहा है? भगवान कह रहे हैं कि जितने भी जीव हैं इस जगत में बद्ध जीव, वह उनके ही अंश हैं और सनातन रूप से अंश हैं। इसके बाद मैं बताना भूल गया, सनातन मतलब शाश्वत। ऐसा नहीं था कि पहले वो अंश नहीं थे और अब अंश बन गए हैं, या ऐसा नहीं है कि अब अंश हैं और आगे अंश नहीं रहेंगे। बातें समझ में आ रही? सनातन का मतलब ऐसा कोई समय नहीं था कि हम भगवान के अंश ना हो रहे हों, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि हम भगवान के अंश नहीं रहेंगे। इसकी व्याख्या अभी टीका में आएगी तो आप क्लियर हो जाए। यानी कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पहले एक ब्रह्म था, एक लाइट थी, उसे कट कट करके जीव बने हैं, और उसके बाद अब जीव जो है जब मुक्त हो जाएंगे तो फिर उसी रोशनी में मिल जाएंगे। ये धारणा नहीं होनी चाहिए। सनातन का मतलब है कि जीव का अस्तित्व हमेशा से है, मध्यावस्था में भी है और मुक्त अवस्था में भी रहेगा। इसको भगवान ने गीता में पहले ही बताया था, नात्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था हे अर्जुन कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये राजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं है कि मैं नहीं रहूंगा कि तुम नहीं रहोगे, ये राजा नहीं रहेंगे। समझ रहे ना मेरी बात? सनातन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अनुवाद देख रहे हैं। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। इससे पहले कि हम टीका में जाएं, एक बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, हमें लोगों से कैसे संबंध जोड़ना चाहिए, कैसे जोड़ना चाहिए। यह जोड़ना चाहिए इस प्रकार से कि मैं भी भगवान का सेवक हूं और यह व्यक्ति भी भगवान का सेवक है। समझ में आ रही बात? तो मैं कैसे इस व्यक्ति को, जो भी आपके सामने आ रहा है, मैं किस प्रकार से उसे कृष्ण की ओर और उन्मुख कर सकूं, मदद कर सकूं। क्या मेरी बात है, समझ में आ रही है? जब हम अपना संबंध भगवान से नहीं देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं, इस व्यक्ति के द्वारा मुझे कैसे इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो जाए, इस व्यक्ति का मैं कैसे शोषण कर लूं, यही तो सोचते हैं, चाहे हम बोले नहीं। ये बात क्लियर हो रही है? तो जब हम ये समझ हैं कि मैं भगवान का अंश हूं, मुझे इस जगह से कोई मतलब नहीं है, मैं इसका हूं नहीं, और ये सामने मेरे सामने एक व्यक्ति आया, उसकी ड्रेस चाहे कुछ भी हो, स्त्री की हो, पुरुष की हो, गरीब की हो, अमीर की हो, वह भी भगवान कृष्ण का उतना ही अंश है जितना कि मैं हूं। Does it make sense? तो हमारा एक ही बिजनेस है कि जो भी हमारे सामने आए, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सीधी सीधी बात, क्योंकि उस उपदेश के द्वारा वह व्यक्ति भगवान के और निकट जाएगा। हमारा आचरण ऐसा हो कि उसे भक्त बनने की प्रेरणा मिले। मान लीजिए हम जप कर रहे हैं, हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम साधना अच्छी क्यों करें? भाई आप साधना अच्छी करोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, और वह परिवर्तन दूसरे लोग देखेंगे, वो देखेंगे ही, आप बोलने की जरूरत नहीं, वो अपने आप देखेंगे। और पहला परिवर्तन ये है कि आप सुखी हो जाओगे, दूसरा परिवर्तन ये है कि आप दूसरों का शोषण करने की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाएंगे। महसूस कर रहे हैं ना इस बात को? मन में आता ही नहीं कि किसी से कुछ चाहिए हमको, केवल प्रसाद को छोड़कर थोड़ा दो रोटी मिल जाए बस, और तो कुछ दिक्कत नहीं। अपने आप ही भक्त के अंदर दूसरों को भोगने की, शोषण करने की भावना समाप्त हो जाती है, एंड पीपल कैन वेरी मच इमीडिएटली डायग्नोज इट कि ये व्यक्ति ऐसा है जो मुझसे कुछ नहीं चाहता। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यू आर डिटैच्ड बट यू आर कंपैशनेट। आप निराशक्त हैं लेकिन आप कृपालु हो जाते हैं। बहुत अच्छी कॉन्शियसनेस है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। समझ में आ रहा है क्यों महाप्रभु कह रहे हैं? वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं, वही आज्ञा दे रहे हैं। तो ये एक भक्त का एटीट्यूड होना चाहिए। अगर हम समझ रहे हैं कि मैं भगवान का अंश हूं, तो चाहे मेरे इस शरीर के रिश्तेदार हों चाहे रिश्तेदार ना हों, वह सब भगवान के अंश हैं। मैं यही हमारे मन में एकमात्र इंग्लिश में कहेंगे एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, अभिनिवेश रहना चाहिए कि मैं कैसे लोगों को कनेक्ट कर सकूं। अब वो कितना ग्रहण करते हैं वह हमारे पर नहीं है, कौन कितना ग्रहण करेगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उनको प्रेरणा दी जाए, हेल्प दी जाए कि वह कुछ भक्ति कर सकें। हर व्यक्ति एक ही जन्म में भगवान के धाम थोड़ा चला जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वो ट्रैक ही पे ना आए। तो इस श्लोक का बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मेरी बात समझ रहे हैं? अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरे जीवों को मदद करना ताकि वह भगवान के इस संबंध को अपने संबंध को भगवान से समझ पाए। दरअसल हमारा और कोई काम नहीं है, एज अ डिवोटी भक्त के रूप में और कोई काम नहीं हमारा, खुद भक्ति करो और दूसरों को हेल्प करो। गीता भोजन टीका लिंक बता रहे हैं, वह कौन सा जीव है जो शरणागति की प्रक्रिया के द्वारा आपकी प्राप्ति करता है? भाई पिछले श्लोक से पिछले वाले में क्या बोला था, जो कौन योग्य व्यक्ति है जो भगवान के धाम जाएगा। फिर कल वाले में बताया कि भगवान का धाम है कैसा, तब प्रश्न यह है कि वह कौन सा जीव, कौन है जो जाएगा। तो उस जीव की व्याख्या यहां पर कर रहे हैं कि जीव वो है कौन जो भगवान का ही अंश है। ऐसा कोई और कहीं से इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है, भगवान का ही अंश है, भगवान का शरणागत होगा तो भगवान के पास चला जाएगा। वह जीव मुझ परमेश्वर का ही अंश है, ना कि ब्रह्मा जी का और ना ही शिव जी का, जो ईश्वर तो है परंतु परम नहीं है। बहुत सुंदर है, आप ये लाइन समझ पा रहे हैं? बहुत ही अच्छी लाइन है। पहला पॉइंट क्या है कि हम कि हमारे पिताजी कौन है? अगर मैं कहूं समुद्र तेरे बाप का मंदिर है तो क्या बोलेंगे? हाँ समुद्र। कभी कभी भक्त में झगड़ा करते हैं, क्यों मैं तेरे बाप का मंदिर है? हाँ हाँ हमारे बाप का ही तो मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, isn't it? शिव जी का बोले तो कहेगा तुम्हारे बाप का मंदिर है? नहीं, ताऊ जी का मंदिर है, चाचा जी का मंदिर है, क्योंकि शिव जी ऑलमोस्ट विष्णु है तो चाचा जी का मंदिर है, लेकिन पिताजी का मंदिर नहीं, पिताजी का मंदिर यहाँ है। क्यों अपने बाप का घर समझ रखा है? हाँ बाप के घर में। तो हम सब लोग जो है छोटे भाई बहन बड़े हो सकते हैं, एक्चुअली वो छोटे बड़े भी नहीं, सभी लोग बराबर हैं। हाँ कुछ लोग उन्नत चेतना में हैं, कुछ लोग निम्न चेतना में। मैं एक भक्त को बोल रहा था, वो एक भक्त के भाई हैं, तो उनके भैया उनकी ट्यूशन की फीस देते हैं 10,000 रुपया कुछ। हमने क्यों देते हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई मेरा जॉब लग गया है, मैं सेटल हो गया हूं, तो मेरे भाई की मदद भी मुझे करनी चाहिए, तो वह भी सेटल हो जाए। बात लौकिक है लेकिन बात बहुत सिंपल है। जब कोई व्यक्ति भक्त बना है और जैसे जैसे प्रगति करता है तो अपना संबंध भगवान से देखता है, अनुभव करता है भक्ति करके मैं कितना सुखी हुआ हूं। तो अब वह देख रहा है, अरे अन्य लोग भी तो भगवान के भक्त हैं, अन्य भी तो भगवान के सेवक हैं, उनकी भी तो मदद करनी चाहिए। तब आप सच्चे भक्त बनना शुरू हुए। और जो कोई कहे हम अपना ही अपना भजन कर रहे हैं तो अभी वह पूरी तरह प्रगतिशील नहीं हुआ, उसे दिख नहीं रहा है कि वो अपना संबंध पूरी तरह से भगवान से नहीं देख पा रहा। Does it make sense? तो भगवान के इसमें क्या पहली चीज सीख रहे हैं कि कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण ही एकमात्र पिताजी हैं, ठीक? ना ब्रह्मा जी हमारे पिताजी हैं और ना शिव जी हमारे पिताजी हैं। सभी लोग जीवात्मा है कि नहीं? यहां पे बंगाली जीवात्मा कौन है? उड़िया जीवात्मा, समझ रहे हैं? ये वैष्णव अपराध होता है, तो कहते ना वैष्णव, यही वैष्णव अपराध, ये उड़िया, ये बंगाली, ये ऐसे ये शब्द है। सब कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के धाम जाने पे सभी का बराबर अधिकार है। क्लियर? ठीक। दूसरा बात क्या है कि भले ही वह ईश्वर हैं, यानी कि कंट्रोलर हैं, नियामक हैं, लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी परम ईश्वर नहीं है। परमेश्वर भगवान कृष्ण ही हैं, स्वराट हैं। इसीलिए कभी कभी प्रश्न आता है, उसको क्यों कृपा दे दिया, उसको क्यों कृपा दे, ऐसा क्यों कर दिया? तुम्हारे पास, हमारे पास ये अधिकार नहीं है कृष्ण को पूछने का कि ऐसा क्यों करते। आप ये प्रश्न नहीं कर सकते कि पूतना को मां क्यों बना दिया, यही उनकी स्वराटता है। बिना भजन के भी वो अपने धाम की प्राप्ति करा सकते हैं, नॉर्मली करते नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर मतलब उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए भगवान का भजन करना बहुत बढ़िया है। कितना भी कोई व्यक्ति पापी क्यों ना हो, उनका जो नाम जब करता है भगवान तुरंत उसको मुक्त कर देते हैं। कोई क्वेश्चनिंग नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है कृष्ण को आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, व्यक्ति की भजन कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जीव सनातन है, अर्थात ऐसा नहीं है कि किसी समय विशेष में इसकी रचना ही हो, जैसे घट में स्थित आकाश। बोतल देना, खाली बोतल है, पानी भरा हुआ है, कोई खाली बोतल होता तो चलो, ये वॉम्पर दीजिए। अभी इसे मान लीजिए वॉम्पर है, इस वॉम्पर में आप ये देख सकते हो खाली स्थान है। तो ये इस तरह की, कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे भाई ये आकाश है यहां पे, ये घट है, मान के चलो कि घड़ा है, तो इस घड़े के अंदर एक आकाश है, इसे कहते हैं घटाकाश। तो कुछ बेवकूफ लोग ऐसा बोलते हैं कि जीव की तुलना इस घटाकाश से देते हैं, आकाश बाहर भी है लेकिन इस घड़े से ये ढक गया है, उस प्रकार का, जैसे घड़े से आकाश ढक जाए कुछ समय के लिए, उसी प्रकार से जब ब्रह्म माया शक्ति से ढक जाता है तो वह जीव कहलाता है। ये ऐसा है नहीं, यानी कि जैसे कि इस जो आकाश यहाँ पे है इसकी सत्ता हमेशा तो है नहीं, अगर इसको हम तोड़ देते हैं, ये खत्म हो जाए, तो ये आकाश जो घटाकाश है समाप्त हो जाएगा। घट, समझ रहे हैं, घट मतलब घड़ा। तो कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जीव भी घटाकाश की तरह है। प्रभुपाद इस बात को समझाएंगे, कई बार आर्गुमेंट आता है, वो ऐसे बोलते हैं देखो भाई ये घड़ा है, इस घड़े में आकाश है, घड़ा तोड़ दो, खत्म आकाश। लेकिन यहां क्या बात हो रही है कि जीव क्या है? सनातन है। वो घटाकाश की तरह नहीं कि घड़ा तोड़ दिया और आकाश में आकाश विलीन हो गया, ऐसे नहीं है। जीव की सत्ता मुक्ति के बाद भी बनी रहती, इसलिए यहाँ पे सनातन शब्द की व्याख्या हुई। इसलिए घटाकाश की तरह नहीं। मुझे पता है कुछ बातें फिलोसफिकल हैं, जो समझ में आए समझ में आ जाए, नहीं समझ में आए तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। यह जीव इस भौतिक जगत में स्थित है और श्रोत्र आदि 6 इंद्रियों को खींच रहा है, मानो यह उसके पांव की बेड़ियां हों। ये समझ पाते हैं इसका मतलब? छह इंद्रियां कौन सी हैं? फिर से याद कीजिए, मन, आंख, नासिका, कान, त्वचा और जीव। अब ये क्या कर रही है, अब तो बड़ा स्पष्ट है, हर इंद्रिय अपने इंद्रिय भोग के लिए जीव को उधर खींचती है। खींच रही है कि नहीं खींच रही? अगर ये खींचाव ना हो तो भक्ति करने में कठिनाई आएगी? कोई कठिनाई नहीं आएगी। मन उधर भाग रहा है कई और इंद्रियां उधर भाग रही हैं, तो यही बोल रहे हैं। और स्पेशली भक्त लोग तो इंद्रिय संयमित कर लेते हैं, लेकिन बद्ध जीवन में आप देखिए क्या हो रहा है, मेरा मन क्या कर रहा है, मन क्या कर रहा है मतलब मेरी जीव क्या बोल रही है खाने के लिए, ये नासिका क्या सूंघने के लिए बोल रही है, आंख क्या देखने के लिए बोल रही है। उसी प्रकार से हमारा जीवन घटित रहता है, घट रहा है सॉरी। क्या ये बातें विजय प्रभु समझ में आ रही हैं आपको? श्रृंखला क्यों बोल रहे हैं समझ में आ रही है? श्रृंखला जिस प्रकार से हमारे मूवमेंट को, बेड़ियां हमारे मूवमेंट को रोक देती हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं, उसी प्रकार से ये इंद्रियां भगवान की भक्ति नहीं करने देती हैं जो भोग की तरफ भाग रही हैं, समझ रहे? इसलिए बोल रहे ये इंद्रियां क्या हैं, कहां से आई? तो कह रहे हैं यह सब अहंकार के उत्पादन है जो प्रकृति के विकार के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए कह रहे हैं प्रकृति स्थानी करशति, प्रकृति में स्थित होगा। मतलब क्या है, आपको याद है कि प्रधान से पूरी जगत आता है, याद है मतलब जो क्लास में थे। अब उसमें भगवान का दृष्टिपात होता है, काल शक्ति, अजीव शक्ति, उससे बनता है महतत्व। महतत्व में तीन प्रकार के अहंकार आते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार से क्या होता है, मन की उत्पत्ति होती है और देवताओं की उत्पत्ति होती है। तो मन की उत्पत्ति अहंकार से हुई कि नहीं, समझ में आ गया? और राजसिक अहंकार से हमारी इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, याद आ रहा है ना? इनका नाम क्या है आपका? ओदब्रो, याद है आपको? पढ़ा था कभी? धूमी धूली धूली याद आ रही, ठीक। राजसिक अहंकार में, राजसिक अहंकार से हमारी इंद्रियां बनती है, कौन कौन सी इंद्रियां? ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। और तामसिक अहंकार से क्या बनता है? इंद्रिय के विषय, देखने के, क्या कहते हैं उसको, रूप रस गंध इत्यादि, समझ आ रहा है ना? तो यही बात बोल रहे हैं कि इंद्रियां जो है वह प्रकृतिस्थ है, मतलब प्रकृति के अहंकार के द्वारा उत्पादित है, ठीक है? कोई हमारी जो इंद्रियां वो चिन्मय इंद्रियां नहीं है, ठीक। यह समझना होगा कि मन सात्विक अहंकार का कार्य है, मतलब उत्पादन है, और श्रोत्र आदि इंद्रियां राजसिक अहंकार का कार्य है। कार्य का मतलब होता है इफेक्ट। तो यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं, मन और जितने भी इंद्रियां हैं, वो क्या हैं? भौतिक हैं, ये कहा जा रहा है। आप समझ में आ रहा है? ठीक, बहुत तेज जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक। भगवान की, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, भगवान की शरणागति स्वीकार करके और भौतिक इंद्रियों से रहित होकर जीव भगवान के धाम में जाता है। बहुत सुंदर लाइन है, प्लीज बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। आध्यात्मिक शरीर और इंद्रियों से आभूषण की भांति सुसज्जित होकर जीव भगवान की शरण लेता है और उनके साथ रहता है। ये दो बातें समझ में आ रही है? बहुत अच्छा है कि जब जीव भगवान की भक्ति करता है और जब भगवान के धाम जाता है, तो इन जड़ इंद्रियों के द्वारा नहीं जाता है, उसकी इंद्रियां पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो जाती है, उसे एक आध्यात्मिक शरीर दिया जाता है जो कि उसी की तरह सच्चिदानंद होता है। अभी आप देख सकते हो कि एक एनालिसिस कर सकते हैं, विजय प्रभु क्या हमारा शरीर शाश्वत है इस समय? नहीं है। क्या हमारा शरीर ज्ञानमय है? नहीं है। और क्या हमारा शरीर आनंदमय है? तो तीनों ही चीज नहीं है। और हम ज्ञानमय हैं? आपका नाम विजय है? क्या हम लोग ज्ञानमय हैं? आत्मा, आप आत्मा हो ना? हाँ ठीक। हम लोग आनंदमय हैं? ये तो परोज आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न। अरे इस कौन का बच्चा बच्चा भी जानता है, क्यों सानू आनंदमय है कि नहीं हम लोग? कल इसको ब्रेकफास्ट नहीं देना। आत्मा तो आप कौन है? आत्मा एक शरीर है, तो स्वरूपतः हम लोग आनंदमय है ना, तभी तो आनंद चाहते ना, ये तो बात है। और हम लोग सब लोग शाश्वत है, शाश्वत है ना? तो आप देख रहे हैं कि हमारे स्वभाव के या स्वरूप के बिल्कुल विपरीत हमको शरीर दिया गया, तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। हम लोग बड़े चकित हो जाते हैं कि प्रॉब्लम आ रही, प्रॉब्लम तो आनी ही है, आपके स्वरूप के, मेरे स्वरूप के बिल्कुल विपरीत चीज दी गई है, एकदम विपरीत। एक भी चीज आत्मा की और शरीर की मैच ही नहीं करती, इसीलिए दुखी होता है। तो यहां बोल रहे हैं कि भौतिक इंद्रियों से रहित होकर, मतलब ये जो हमारी जड़ इंद्रियां हैं उनसे रहित होकर के जीव भगवान के पास जाता है और उसको आध्यात्मिक इंद्रियां दी जाती हैं जिसके द्वारा वह भगवान की भक्ति के सुख का अनुभव करता है। ठीक है, और ये सब हमारे साथ होने वाला है। ऐसा मत सोचिए खाली कहानियां हैं, कहानियां लिखने के लिए टीका नहीं दी जा रही है कि हाँ होता होगा कि उनके संग होता होगा, उनके संग हुआ, प्रभुपाद जी के संग हुआ, अन्य भक्तों के संग, मेरे संग नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा, कोई आचार्य आते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो वैसा मार्ग बताते हैं जिस पे चल करके एक सामान्य जीव भी भगवान की प्राप्ति कर ले। इस भाग्य को ठुकराइए मत। ये प्रभुपाद जी मैं बार बार रोज बोल रहा हूं, 16 माला का जप जो बोले हैं, 4 नियम का पालन बोले हैं, ये इसीलिए बोले ताकि ये स्थिति में प्राप्त हो जाए, मृत्यु के समय आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवान के धाम चले जाए। ऐसे पहले समझ रहे ना, मजाक करने के लिए आचार्य गुण नहीं आ रहे हैं आपको कि झांसा देने के लिए आ रहे हैं, नहीं ऐसे बस हमारे कुछ चेले बन जाएं। दे वॉन्ट अस टू गो बैक टू बॉर्डर, वो चाहते हैं कि हम भगवान के धाम चले जाएं। खींच रहे हैं बस, हमें खाली रस्सी पकड़े रहना है। खींच वो लोग रहे हैं कि हम जो सूरह माला जप कर रहे हैं खाली हम पकड़े हैं, हम चढ़ भी नहीं, हम ऊपर भी नहीं चढ़ रहे, खाली पकड़े हुए हैं। बाकी अब पकड़ना भी छोड़ देंगे तो कौन फिर करेगा, समझ रहे ना। कुएं में गिरा आदमी, ऊपर से रस्सी फेंके, कहे हम तुम्हें उठा लेंगे, अब आप रस्सी बस पकड़े रहो, ये पकड़ भी आप ही लीजिए। तो ऐसा तो नहीं चलेगा, पकड़ना तो हमको पकड़, रस्सी तो कम से कम पकड़े हैं, हमको बहुत बड़ी साधना नहीं कर रहे हैं, खाली रस्सी पकड़े हैं। और बाकी सारा कार्य आचरण प्रभुपाद बोलते हैं इस बात को, तुम लोग यहां हरे कृष्णा कर रहे हो, मैं गोलोक में हरे कृष्णा कर रहा हूं, ये हमारा कनेक्शन। स वा एष ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम मर्त्यम अतिसृज्य ब्रह्माभि संपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा श्रृणोति ब्रह्मणे वेदम सर्वम। ये कोट कर रहे हैं किस प्रकार से उसको एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। वह ब्रह्मनिष्ठ जीव मतलब जो मुक्त जीव है, भौतिक शरीर को त्याग कर ब्रह्म की प्राप्ति करता है। ब्रह्म की प्राप्ति मतलब भगवान के धाम को जाता है। वह ब्रह्म के द्वारा देखता है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ब्रह्म के द्वारा देखता है मतलब उसकी आंखें अब भौतिक नहीं है, समझ रहे। ब्रह्म के द्वारा सुनता है, क्या मतलब है, उसकी अब भौतिक कान नहीं है, वो अब असीमित सुख का अनुभव करने वाले कानों से युक्त है। और सभी कुछ ब्रह्म के द्वारा अनुभव करता है, यानी उसका मन इंद्रियां सब कुछ स्पिरिचुअल चिन्मय हो जाता है। और देखिए मुझे अच्छी बात ये लगती है कि हम लोगों को हवा में नहीं बोल रहे हैं, श्रुति का वाक्य है, वेद वाक्य है, इसलिए उस पर विश्वास करना ही चाहिए। वसंत यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये निमित्त निमित्तेना धर्मेणा आराधयन हरिम। वैकुंठ लोक में सारे निवासी पुरुषोत्तम भगवान के समान आकृति वाले होते हैं, वे सभी इंद्र तृप्ति की छांव से रहित होकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो आप देखिए भगवान कितने अच्छे स्वामी हैं। कोई व्यक्ति जगत में सुंदर होता है तो क्या चाहता है, मैं सबसे सुंदर दिखूं, यस है ना। लेकिन भगवान सबसे सुंदर हैं, लेकिन अपने रूप को अपने दासों को भी दे रखा है। अभी फिर बृहद भागवतमृत की बात आती है, वैकुंठ में गोप कुमार जाते हैं और वैकुंठ के जस्ट मतलब जो उनको लेके गए थे कहते हैं अभी हम भगवान को बता के आते हैं आपको, आपके बारे में आप यहां वेट कीजिए। तो इतने में अन्य पार्षद भगवान से मिलने आते हैं और वो भगवान एकदम भगवान जैसे लगते हैं, तो वो उनको प्रणाम करते हैं, वो सोचते यही भगवान है, प्रणाम करते हैं और उनको कहते हैं अब भगवान की जय हो, भगवान की जय। कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम तो सेवक है, ऐसा मत बोलिए, हम तो सेवक है, हम लोग भगवान नहीं है। फिर जब वो आगे फिर आगे जाके देखते हैं कि भगवान के यहाँ पे पक्षस्थल पे ये कौस्तुभ मणि और श्रीवस का चिन्ह है, ऐसे करके फिर और भगवान की सुंदरता देखते हैं। तो भगवान कितने अच्छे स्वामी हैं कि अपने खुद के स्वरूप को अपने दासों को देखे रखते हैं। ऐसे ही फिर उसके आगे जाकर अयोध्या जाते हैं तो वहां शत्रुघ्न को देखते हैं, शत्रुघ्न जो है भरत जी के, हाँ शत्रुघ्न भरत जी के संग, तो वहां भी प्रणाम करना चालू कर देते हैं, अरे आप ही भगवान है, आप ही भगवान है। फिर वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं भगवान नहीं, मैं तो सेवक हूं। तो फिर आगे जाकर भगवान श्री राम से वो मिलते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान बड़े उदार हैं, वो ही नहीं चाहते कि बस मैं ही सुंदर दिखूं, मेरे सेवक सुंदर ना दिखे। तो यहाँ पे सर कहने का क्या अर्थ है, कहने का अर्थ ये है क्यों कोट किया गया है कि भगवान अपने ही समान सुंदर दिव्य चिन्मय शरीर अपने सेवक को देते हैं ताकि वह उस चिन्मय शरीर से आध्यात्मिक शरीर से उनकी सेवा कर सके। इसी के लिए मानव जीवन है, नौकरी करने के लिए नहीं है। लेकिन अब समझ में नहीं आता लोगों को, 2-4-5-10,000-20,000 के लिए आदमी कितना मेहनत कर रहा है। कोई बात नहीं करो, इस जन्म में समझ में नहीं आएगा, इस जन्म में समझना शुरू करेंगे हो सकता है अगले जन्म तक समझ में आ जाए, और नहीं तो अगला जन्म ही तो है। क्या कहते हैं, आज करे सो कल कर, और कल करे से परसों, ऐसी जल्दी क्या पड़ी जब जीना है परसों। देखो आपने बोला नहीं जीव सनातन है, तो है बहुत टाइम है, क्या दिक्कत है, वर्णन करेंगे आराम से, इतनी जल्दी भगवान के नाम जाने की क्या जरूरत है। चलिए कटाक्ष करना मेरा स्टाइल है। भगवत संकल्प से सिद्ध जीव एक चित विग्रह प्राप्त करता है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है कि लाइन बहुत सुंदर है कि ये आध्यात्मिक शरीर कैसे प्राप्त होता है जीव को, भगवत संकल्प से, भगवान के संकल्प से। जब कोई देखिए बहुत अच्छी बात है, अभी मैं रेफरेंस तुरंत नहीं दे सकता लेकिन बहुत सुंदर बात है कि जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति करना शुरू करता है भगवान के हृदय में संकल्प तुरंत आ जाता है कि इस व्यक्ति को मुझे निर्गुण बनाना है और अपने पास लेके आना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही कोई भक्ति करना शुरू किया है तुरंत भगवान के मन में संकल्प आ जाता है। इसने हरे कृष्ण मंत्र बोला है, इसको मैं चिन्मय बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा मतलब तुरंत नहीं बनाते हैं लेकिन अब क्रमशः उसको मैं पूरी तरह मुक्त कर दूंगा और इसे अपने पास लेके आऊंगा। समय लग सकता है, उसकी खुद की भक्ति पर भी निर्भर करता है लेकिन संकल्प भगवान का है। मेरी बात समझ रहे हैं भक्तों? हम लोग कभी अपनी शक्ति से सिद्ध होंगे ये नहीं सोचना चाहिए, हम भगवान की कृपा उनके संकल्प से सिद्ध होंगे, संकल्प तब होगा जब हम भक्ति करेंगे। मेक सेंस? और आपको याद होना चाहिए कि भगवान के संकल्प को कोई काट नहीं सकता है, तो यानी हम सबकी सिद्धि हाउ टू से अश्योर्ड है, हम सब लोग भगवान के धाम जाएंगे। अब ये अलग निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से भजन कर रहा है, कितनी तीव्र उसकी इच्छा है, उसके अनुसार समय का अंतर पड़ सकता है। कुछ लोग ब्रह्म के अंश जीव को घट के आकाश या आकाश के जल्ब में प्रतिबिंब से उपमा देते हैं। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि घड़े में आकाश है, वो घड़ा टूट गया तो जो घड़ा का आकाश है वो आकाश में मिल जाएगा, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। ठीक है ना, ये बात ठीक नहीं है। हाँ ठीक नहीं है, या आकाश में आकाश का प्रतिबिंब जल में दिखाई पड़ रहा है तो अब जल समाप्त, प्रतिबिंब समाप्त। इस प्रकार की धारणा जीव के संबंध में नहीं करनी चाहिए। जीव को एक सेंस में भगवान का रिफ्लेक्शन बोलते हैं, उसकी टीका में हम व्याख्या पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं है कि बस अब जल समाप्त तो जीव समाप्त। जीव का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। आप लोगों को बता दें कि आप लोग कभी मर नहीं सकते हैं, पता है आपको राजकुमार, पता है मर नहीं सकते कभी, मर सकते हैं नहीं मर सकते, हम कभी नहीं मर सकते। जीव अविनाशी है, कोई कभी नहीं मरता है, केवल ड्रेस चेंज करते हैं। कल भी यही टी शर्ट पहने थे जो आज पहने हो, आज अलग पहने ना, तो आज दूसरे राजकुमार है कि वही राजकुमार है, तो टी शर्ट तो अलग पहने हैं। समझ में आ रहा है ना, जैसे हम लोग कपड़े चेंज करते हैं आदमी चेंज नहीं होता है, उसी प्रकार से शरीर परिवर्तित होता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसकी हम व्याख्या करेंगे तो सुनते चले जाइएगा। उनका ऐसा मत है कि ब्रह्म का एक अंश अंतःकरण के हस्तक्षेप के कारण ब्रह्म से अलग हो जाता है। प्रतिबिंब के नष्ट होते ही या घड़े या जल के नष्ट होते ही आकाश अपनी शुद्ध स्थिति में वापस आ जाता है, तो उसी प्रकार अंतःकरण के नाश होते ही या प्रतिबिंब के नष्ट होते ही जीव जो ब्रह्म का अंश था वह वापस अपनी ब्रह्म की शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। बहुत लंबा कठिन बात हो गई, इजी तरह बता रहा हूं। देखिए अंतःकरण मतलब मन बुद्धि अहंकार, तो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि एक ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म उसको कहते हैं, ज्योति नहीं कहते ब्रह्म कहते हैं, तो उस ब्रह्म के किसी एक अंश को ये जो अंतःकरण है ये सूक्ष्म शरीर है उसने ढक लिया, बस काट लिया ऐसा वो बोलते हैं, और उसके बाद वह ब्रह्म जो है अपने को जीव मानने लगा, ये शरीर मानने लगा। तो जैसे ही ये सूक्ष्म शरीर हट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में जाकर के मिल जाएगा, ये वो बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या गड़बड़ है, अगर ये व्याख्या हम स्वीकार करते हैं तो इसमें गड़बड़ क्या है कि चलो ये मान लिया कि वह ब्रह्म उस पहली बात तो यह है कि ब्रह्म को काटा नहीं जा सकता, ब्रह्म को आप इस प्रकार से ऐसे कैची की तरह पीसीज में नहीं काट सकते, एक बात तो ये। दूसरा कि क्या इससे जीव का सनातनत्व सिद्ध होता है, नहीं होता। यहां भगवान कह रहे हैं कि जीव जो है वो क्या है, वो सनातन है। और अगर हम ऐसी व्याख्या करें कि भाई ब्रह्म था वो आकाश की तरह था और बाद में वो खत्म हो गया, तो ये कहने का अर्थ हुआ कि जीव का अस्तित्व मुक्त अवस्था में समाप्त हो जाएगा, तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? मेरी बात समझ में आ रही नहीं? पर आप कह रहे हो कि भाई आकाश है, आकाश का प्रतिबिंब जो है जल में दिख रहा है, तो जल समाप्त तो प्रतिबिंब समाप्त, तो वहां पे भी जीव की सत्ता समाप्त होने का बोध हो रहा है, तो इसलिए दोनों ही एक्सप्लेनेशन गलत हैं। ये फिलॉसफी समझ में आ रही हो उद्धव प्रभु? नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस बात में आउट ऑफ कोर्स बोल रहा हूं, और अभी आपको प्रभुपाद जी के तात्पर्य में दिखा दूंगा, अभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखेगा, इसीलिए व्याख्या कर रहे हैं। ये कभी मत सोचे कि मैं आउट ऑफ सिलेबस बोल रहा हूं या प्रभुपाद जी को छोड़ देते हैं। प्रभुपाद कभी छोड़ते नहीं है, हम छोड़ देते हैं और आगे निकल जाते हैं। ये प्रॉब्लम है, कोई चीज कठिन आएगी उसे छोड़कर चलो ये दूसरे डिवोटी समझेंगे, हम नहीं समझेंगे आगे जाके। और ये इंडिया में बहुत फिलॉसफी चलती है, घटाकाश पटाकाश, घटाकाश पटाकाश। घटाकाश मतलब घड़े का आकाश, पटाकाश मतलब बड़ा वाला आकाश। आप ही विश्वास कीजिए, ये तो सच्ची घटना है, एक भक्त की दीक्षा हो गई, हम ही ने दीक्षा करवाई थी, और मैं प्रवचन कर रहा था, कहते अच्छा अच्छा। वो सोच रहे थे कि उनके फिलॉसफी ये थी, वो ब्रह्म कुमारियों के सब पहले संग सत्संग कर चुके थे महत्पुरुषों का, तो हाँ, तो उनका फिलॉसफी ये है कि पहले ब्रह्म था, एक ब्रह्म, और उसे कट करके बहुत सारे जीव बन जाएंगे, तो अब बाद में ये जीव फिर जुड़ करके ब्रह्म में मिल जाएंगे। ये उनकी पूरी फिलॉसफी थी। तो इस कौन में आए तो एक बात तो समझ में आ गई कि जीव जो है आध्यात्मिक जागत में जाकर के भगवान की सेवा करता है, लेकिन पीछे वाला जो पूछ थी वो नहीं कटी। मतलब वो वही सोचते थे कि एक ब्रह्म है, उसे सारे जीव आए हैं, और वो जीव मुक्त होकर के भगवान के धाम चले जाएंगे। देख रहे कैसे वो पुच्छा, वो जो पुच्छड़ रहा है वो लगा रहता उसमें। ना तो जीव इस प्रकार से एक समूह से आया है, और ना वह जाकर के समूह में विलीन होने वाला है। पूरी फिलोसफी समझ में आ रही है, जीव हमेशा भगवान का अंश है। ऐसा नहीं था कि वो एक ब्रह्म के पुंज से कट करके आया, ऐसा नहीं है। प्लीज समझे इस बात को, ये फिलोसफी बहुत प्रेवलेंट है भारत में, कि एक उस ब्रह्म से ही आई है सब चिंगारी की तरह, और फिर उसी में जाके मिल जाएंगे। गर्भोदक्षा विष्णु सांस लेते हैं, तो इसमें ये तो नहीं मतलब है ना कि ब्रह्म से कट कट के जीव आ रहे हैं बाहर। जीव हमेशा वहां पर सुप्त अवस्था में रहते हैं अणु रूप में, फिर वो बाहर आते हैं। ये तो नहीं बोला जा रहा है कि सब एक साथ चुपके हुए थे, वो काट काट करके भी इसका इस साइज का जीव काट करके, ऐसा तो कटने का कोई संभावना ही नहीं। नहीं तो भगवान गीता में क्यों बोलते हैं आत्मा को काटा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, बोलते हैं कि नहीं बात? यस। तो इस सब बात में फिर सब भगवान की गलत हो जाएंगी, तो इसलिए इन सबको समझते हुए चलना चाहिए। यहां देखिए बुद्धि थोड़ी चलानी पड़ेगी, भगवत गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है। इस तरह की बातें जब प्रचार आप करेंगे तो जरूर आपके सामने पाएंगे। जब भी कोई इस प्रकार से बोले कि ब्रह्म था, उससे जीव कट के उसका फिर कट के फिर मिल जाएंगे, तुरंत आप इस श्लोक को उठ कर सकते हैं कि नहीं, जीव की सत्ता सनातन है। एक बार आप लोग उसको दोबारा पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। अगले साल अच्छा एक पुरुषोत्तम मास अच्छा टाइम पढ़ लीजिएगा। उस श्लोक के अंश शब्द की आप तरह अंश की बहुत सुंदर व्याख्या देखिए। इस श्लोक के अंश शब्द की यह व्याख्या स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके विरुद्ध में वाक्य हैं। भगवान कह रहे हैं कि जीव समूह उनका अंश है और शाश्वत अंश है, ना कि क्षणिक अंश। इलाने समझ में आ रही है, जितने भी जीव हैं वह व्यक्तिगत रूप से भगवान के अंश हैं, और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे या बाद में नहीं रहेंगे, ये बात बोली जा रही है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भगवान से कट कट करके जीव आए हैं या जीव जाकर के भगवान वापस में मिल जाएंगे। ठीक, क्लियर। ब्रह्म के परिच्छेद और प्रतिबिंब के दोनों वाद जो ब्रह्म के जीव के रूप में परिणत होने की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, वे देहिन अस्मिन आदिश की व्याख्या से ही खंडित होते हैं। यही बात हो रही है, परिच्छेद मतलब ब्रह्म को काट दिया, बात चल रही थी ना कि ब्रह्म कट गया और वह घटाकाश के रूप में हो गया, घड़े में आकाश के रूप में हो गया। समझ में नहीं आ रहा सारी बात, टफ हो रहा है, थोड़ा टफ हो रहा है, मुझे पता था ये टफ होगा। और या फिर ब्रह्म के प्रतिबिंब के रूप में जीव है, ये दोनों ही बात गलत है, क्योंकि इससे जीव की सनातनता नष्ट होती है, जीव सनातन रहता है। भगवान क्या बोलते हैं, देहिनो अस्मिन इथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोहयति। वो आत्मा, हम आत्मा अपने शरीर के परिवर्तन को देख रहे हैं, बचपन में बचपन वाला शरीर था, अब तो दूसरा शरीर है, उसके बाद आगे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इस पूरे परिवर्तन में आत्मा अपरिवर्तनशील रहती है। ये समझ में आता है ना श्लोक, तो उसी से समझ लेना चाहिए कि आत्मा का अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं होता और कभी भी इसका सृजन नहीं होता। हाँ, ये समझ में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये लोग ये बात ही गलत है। वो कह रहे हैं कि देखिए आकाश है, आकाश का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन जल में आता है, जल समाप्त रिफ्लेक्शन समाप्त। तो अब ये कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म शरीर को वो जल के स्थानीय मान रहे हैं, जैसे जल है वैसे सूक्ष्म शरीर है, तो उस अंतःकरण में ब्रह्म का रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस कारण से वह जीव के रूप में दिख रहा है। जैसे सूक्ष्म शरीर नष्ट कर दोगे वो ब्रह्म में मिल जाएगा। तो दोनों ही बात में क्या कह रहे हैं, जीव की सत्ता को वह सनातन होने से रोक रहे हैं, जबकि जीव की सत्ता एग्जिस्टेंस है वह सनातन है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। समझ आ रहा है? ठीक है। अब किस प्रकार से हम प्रतिबिंब का यूज कर सकते हैं वो देखिए। प्रतिबिंब के सादृश्य से व्यक्ति उसके मूल स्वरूप को समझ सकता है, यदि वह उसके मूल को बड़ी ही ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करे। जैसे जल में किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देखकर उस वस्तु का अनुमान किया जा सकता है, इसलिए जीव को ब्रह्म का उपसर्जन कहा जा सकता है, और इस कारण से जीव को ब्रह्म का अंश कहा जाता है। अब देखिए कितना सुंदर बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, से कई बार बोल रहे हैं वो क्या, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप किसी वस्तु के रिफ्लेक्शन को देखते हो, रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रतिबिंब, तो उसको देख करके मूल वस्तु का अंदाज आप लगा सकते हो। तो भगवान कृष्ण का रिफ्लेक्शन जीव है, किस अर्थ में कि जैसे भगवान सच्चिदानंद हैं उसी प्रकार से जीव भी सच्चिदानंद है। तो जीव का अध्ययन करके हम भगवान का अनुमान कर सकते हैं। सुने हैं ना प्रभुपाद कई बार बताए हैं कि यदि आपको भगवान को समझना है तो पहले आपको जीवात्मा को समझना होगा। ये तो आप सुने ही हैं। एक और जगह प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, दो उदाहरण, चिंगारी का और अग्नि का। चिंगारी में गुण की दृष्टि से वही गुण है जो अग्नि के हैं, तो अगर आप चिंगारी का एनालिसिस करते हैं तो अग्नि का हम ठीक ठीक अंदाजा लगा सकते हैं। और समुद्र की बूंद का अगर आप एनालिसिस करते हो तो आप समुद्र के जल का भी विश्लेषण कर सकते हो। लेकिन क्या चिंगारी अग्नि बन जाती है, क्या समुद्र का जल समुद्र बन जाता है, ये सब नहीं होता है। डज इट मेक सेंस? यही बात मैं बोल रहे हैं कि अगर आप प्रतिबिंब की बात करें तो जीव का भगवान के रिफ्लेक्शन के रूप में है, मतलब भगवान के जो गुण है अंश मात्र में वह जीव में प्रकट हो रहे हैं। समझ रहे हैं बातें? लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि बस अब हमारा सूक्ष्म शरीर नष्ट हो गया और उसके बाद जीव की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। यहां हमने क्या सीखा है, जब ये सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा तो फिर हमें क्या प्राप्त होगा, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जिसके द्वारा हम भगवान के धाम में हमेशा सेवा कर पाएंगे। सिद्धांत सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, कभी कभी सिद्धांत भी सीखना चाहिए कि नहीं। अब ये बहुत सुंदर है, जैसे यदि यह कहा जाए कि चंद्रमंडल का शतांश शुक्र मंडल है, तो उसका अर्थ यह हुआ कि उसमें चंद्र की तुलना में 1/100 गुना ही प्रकाश है, परंतु वह चंद्रमा का वास्तविक अंश नहीं है। ये क्यों बोल रहे हैं? अगर ये कहा जाए कि चंद्रमा के प्रकाश का 1/125 शुक्र मंडल, शुक्र मतलब एक दूसरा ग्रह है, उसमें है, तो कहने का क्या अर्थ है कि जितना चंद्रमा का प्रकाश है उसका 1/100 अंश ही शुक्र ग्रह का है। ये बात समझ में आ रही है? हिंदी समझ में आ रही है मेरी? नहीं आ रही? समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो अब इसका अर्थ ये नहीं है कि शुक्र ग्रह जो है वह चंद्रमा का भाग है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा को काट करके 1/125 काट करके शुक्र ग्रह बनाया गया है। आकाश समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? घटाकाश की पटाकाश? घटाकाश फिर तो नहीं समझ में आया ना, घटाकाश ना पटाकाश। थोड़ा पानी पिलाया जाए क्या, बेहोश तो नहीं हो रहे समझने में? ये लाइन समझ में आ रही है आपको? ये बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है भाई। शुक्र मंडल या शुक्र ग्रह का अस्तित्व तो अपना अलग है और चंद्रमा का अस्तित्व तो अपना अलग है। तो ये कहना कि इसका प्रकाश उसका इतना अंश है, इसका मतलब है कि इतना भाग प्रस्तुत कर रहा है। ये नहीं है कि शुक्र मंडल का चंद्रमा को काट के बनाया गया। तो भगवान जब ये कह रहे हैं कि जीव मेरा अंश है, मतलब भगवान के गुणों को कुछ किंचित मात्र में वह जीव प्रस्तुत करता है। ऐसा नहीं कि भगवान को काट करके जीव बनाया गया है, भगवान को काटा नहीं जा सकता है। मेरा मुंह सूख जाएगा बोलते बोलते लग रहा, लेकिन समझ में नहीं आया किसी को। आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अंश कहने का मतलब समझ रहे हैं, भगवान के गुणों का कुछ अंश का प्रकाशन जीव करता है। समझ ना, समुद्र के सारे गुणों को एक बूंद में नहीं कर सकते, लेकिन कुछ गुणों का अंश उस समुद्र की बूंद में आता है। यस प्रभु।
प्रभु जी, इससे तो ये समझ आता है कि मतलब हम भगवान से अलग नहीं हुए हैं, यही कहा जा रहा है।
अलग नहीं हुए हैं मतलब भगवान को काटा काट काट करके जीव नहीं बनाया गया है। जीव की सत्ता हमेशा है और भगवान की सत्ता हमेशा है, लेकिन जीव में भगवान के कुछ गुण होते हैं, इसलिए उनको भगवान का अंश कहा जा रहा है।
प्रभु जी, एक चीज देखी जाए, जैसे भगवान अनंत है, इनफिनाइट है, अगर इनफिनाइट में से कुछ निकाला जाए तो फिर भी वो इनफिनाइट।
अरे बाबा, लेकिन आप ये कह नहीं सकते कि कुछ निकाला जाए, क्योंकि कभी कुछ निकाला जाता नहीं है। आप ये एज्यूम कर रहे हो कि इन्फाइनाइट से कुछ निकाल लेंगे तो इन्फाइनाइट रहेगा, लेकिन आप वहां पे फिर ये कह रहे हैं कि भगवान को काटा जा सकता है। ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि काट काट करके भगवान जीव के रूप में हुए, ऐसा कभी नहीं है। ये वेदांत सूत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि जीव और भगवान दोनों ही शाश्वत है, इसीलिए भगवान बोल रहे हैं सनातन। देखिए, आप उदाहरण तब दे सकते हैं जो सिद्धांत स्थापित हो, सिद्धांत को समझाने के लिए, सिद्धांत स्थापित करने के उदाहरण नहीं दे सकते आप। ये आपकी बात सही कि भगवान से बहुत कुछ चीजें आती हैं, भगवान भगवान ही रहते हैं, लेकिन यह नहीं बोला जा रहा है कभी कि जीव भगवान को काट काट करके जीव बनाए गए, ये कभी नहीं बोला जा रहा। ये इन लोगों की अपनी एक धारणा है मायावादियों की। पता है क्यों? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि वो भगवान बन जाए, तो उन्हें कन्विंस करने के लिए वो बोलते हैं कि बस अब आपको अपनी अज्ञान नष्ट करना है, उसके बाद घटा प्रकाश पटाकाश, आप ही आकाश है, आप ही ब्रह्म है। ठीक है, हाँ, ये समझ में। अंश वाला बात क्या बोल रहे हैं? अंश होने का अर्थ है कि एक वास्तविक वस्तु किसी विशेष स्थान पर रहती है। ब्रह्म शक्तिमान है और उसकी शक्ति भी वास्तविक है, यानी कि जीव भी वास्तविक है। ऐसा नहीं कि खाली एक ब्रह्म है कि जीव है, वाकई जीव है, और वह ब्रह्म यानी परब्रह्म यानी भगवान कृष्ण की शक्ति, वो भगवान है और जीव है, इन दोनों की सत्ता एग्जिस्टेंस हमेशा बनी रहती। ब्रह्म की शक्ति जीव है, इसको भगवान के पहले के वाक्य से समझा जा सकता है, यथा इतस्तु अन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम। ये जितने भी जीव हैं, ये भगवान की उत्कृष्ट प्रकृति हैं, इनको जीव जानो। ये 7.5 में बोले थे ना भगवान कि ये जो भूमि रपन अलो वायु खम मनो बुद्धि रे वचा, ये सब जड़ प्रकृति है, और इससे परा प्रकृति कौन सी है? जीव भूत, अभी मेरे अंश है, मेरी प्रकृति है, परा प्रकृति। यस, तो यानी यहां पे क्या कह रहे हैं कि जीव भगवान की शक्ति है, भगवान का अंश है, मतलब भगवान के कुछ गुण उसमें प्रकाशित हो रहे हैं, उसकी सत्ता हमेशा रहती है और भगवान की सत्ता हमेशा रहती है। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा कभी नहीं है कि वो मिलने वाले हैं। क्या प्रश्न है? अरे भाई, ब्रह्म बात में, मायावाद और ब्रह्मवाद में क्या अंतर है? देखिए, ब्रह्मवाद में एक दार्शनिक ब्रह्म का चिंतन करता है, निर्विशेष ब्रह्म का, लेकिन वो भगवान कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बोलता। लेकिन मायावादी क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण यहाँ पे आते हैं तो वो कौन है? वो जो ब्रह्म है वह सतोगुण का संग करता है और उस कारण से वह कृष्ण के रूप में प्रकट होता है। तो ऐसा लग रहा है वो कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन क्या गुणगान है? ये नितांत अपराध है भगवान के प्रति। भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो अपने चिन्मय विग्रह को अपनी इच्छा से प्रकट करते हैं। आपको पता ना, स्वप्रकाश विग्रह कल बात हुआ था, जैसे सूर्य अपनी शक्ति से प्रकट करता है। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि भाई देखो, सूर्य जब आता है तो यहाँ जो हमारा बड़ा वाला पावर हाउस है ना, वहां से हम करंट भेजते हैं, तो ये अपराध होगा ना सूरज के प्रति, है ना अपराध? सूर्य तो अपनी शक्ति से प्रस्तुत हो रहा है, तो ये लोगों को धोखा देने वाली बात है। तो मायावादी क्या कहते हैं कि भगवान का नाम रूप गुण और लीला, ये जो कुछ भी है, यह माया के द्वारा सृजित है। अच्छा है, सतगुण का है, अच्छा हम भी अच्छा मान रहे हैं, लेकिन उसको निर्गुण नहीं मानते हो, लेकिन तो ये मायावाद है। ब्रह्मवादी जो है वह भगवान के बारे में कुछ बोलता नहीं है, वह केवल ब्रह्म का ध्यान कर रहा है, जैसे सुखदेव गोस्वामी थे, वह भगवान का अपराध नहीं कर रहे हैं, केवल वो निर्विशेष ब्रह्म के बारे में जानते, वहीं तक ध्यान उसका चल रहा है, भक्तों का संग करते हैं तो वह मुक्त हो जाते, लेकिन भगवान के अपराधी नहीं। लेकिन मायावादी लोग भगवान को ब्रह्म के अधीन मानते हैं, मतलब निर्विशेष ब्रह्म के अधीन। ठीक है, अब इसको ले सकते हैं। और कौन सा प्रश्न है? अभी पहले पूरा कर लेते हैं तो क्लास पूरा नहीं हो पाएगा। जीव भगवान का अंश इसलिए कहलाता है क्योंकि भगवान के कुछ गुण उसमें हैं, लेकिन वो भगवान के अंदर से नहीं आता। यस, दिस इज द पॉइंट कि वह जैसे कि समुद्र का जल समुद्र के कुछ गुण लेकर रहता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। कभी भी वो बोलते भी हैं बूंद जो है समुद्र में मिल जाती है, अरे फिर भी बूंद रहती है कि नहीं रहती है? ऐसा तो नहीं बूंद जाकर गायब हो जाती है, समझ रहे? तो इसी प्रकार से भगवान का अंश है, भगवान के इसमें गुण है, लेकिन उसकी व्यक्तिगत सत्ता जीव की हमेशा बनी रहती है। यस, क्या जीवात्मा बिना शरीर के रह सकता है? नहीं, जब भौतिक जगत में रहता है तो उसे स्थूल और सूक्ष्म शरीर दिए जाते हैं, और जब आध्यात्मिक जगत में रहता है तो उसको आध्यात्मिक जन्म शरीर। हाँ, अगर ब्रह्म में लटक गया तब ऐसा हो सकता है, ब्रह्म ज्योति में अगर लटक गया तो उसको कोई ना आध्यात्मिक शरीर मिलेगा ना भौतिक शरीर मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता। ब्रह्म ज्योति में कुछ नहीं मिलता, सूक्ष्म शरीर भी नहीं स्थूल शरीर में, लटके रहो आत्मा की तरह जैसे भी पता नहीं। और इसीलिए बड़ी इसको इसीलिए भक्त लोग नरक कहते हैं, नरक से भी क्या कैवल्यम नरक आए थे, क्योंकि कृष्ण की सेवा करने को नहीं मिलता। देखिए, जीव सेवा करके ही सुखी रह सकता है, उसका स्वरूपगत लक्षण है। तो अब ब्रह्म में कहीं सुख है ही नहीं वस्तुतः, क्योंकि वह है कहीं सेवा का मौका ही नहीं, इंद्रिय ही नहीं आपके पास सेवा करने के लिए, इसीलिए वहां से गिर जाते हैं लोग। इसलिए क्योंकि जीव एक विशेष स्थान में रहता है और वह भगवान से अलग रहता है, परंतु कुछ समानता भी रहती है, इसलिए जीव को भगवान का अंश कहा गया है। समझ में आ गया बात? भगवान की प्रकृति है, भगवान की उत्तम प्रकृति है और उसका अस्तित्व है, इस रूप से भगवान से कहा जा रहा है कि वह अंश है। लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को काट करके जीव बनाया गया। बार बार मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये इस टीका का मुख्य फोकस है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य। यहां तक सब चीजें समझ में आ रहा होगा? इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। सूक्ष्म मतलब है बहुत छोटा है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध जीवन में वह एक व्यष्टत्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। इसकी व्याख्या हमने करी थी कि नहीं? ऐसा नहीं कि पहले एक ब्रह्म था और वो कुछ कटवुट करके बद्ध होकर के यहाँ पे आ गया जीव के रूप में, अब जब मुक्त हो जाएगा तो वापस ब्रह्म में मिल जाएगा। ऐसा सब नहीं है, हमेशा जीव की अस्तित्व बना रहता है, वह सनातन का अंश रूप है। यहां पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार है और जीव विभिन्नांश है, पृथकीकृत अंश है। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंहदेव, विष्णुमूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं, भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्न अंश के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। इससे पहले आगे बढ़े हम समझ लेते हैं, दो प्रकार के अंशों का वर्णन हुआ, कौन से? स्वांश और विभिन्न अंश। जब ये कहा जा रहा है कि भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, तो कृपया ये मत सोचिए कि किसी समय विस्तारित करते हैं। आप कहेंगे कि अरे भगवान ने अपने आप को भगवान श्री राम के रूप में विस्तारित किया, कब किया? पहले कब? हाँ, यानी कि उंगली जाएगी तो ऊपर, लेकिन पहुंच नहीं पाएगी कब? हमेशा से। फिर रिपीट कर रहा हूं, हमेशा से भगवान अपने आप को विभिन्न विष्णु स्वरूपों में विस्तारित किए हुए हैं। ये दोनों ही बात सत्य है, वो उनके विस्तार भी हैं और अनादि भी हैं। उसी प्रकार से जीव भगवान का अनादि सेवक है, अनादि काल से वह भगवान का ही अंश है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जीव कभी किसी समय भगवान से आया हो। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इन दोनों के अर्थ को समझ लेना चाहिए। स्व अंश का अर्थ क्या होता है? राम, विष्णु, वराह, नरसिंह जितने भी भगवान के स्वरूप हैं, वह भगवान के कितनी शक्ति उनमें कितनी शक्ति होती है? अगर भगवान में 100% शक्ति है कृष्ण में, तो भगवान विष्णु में कितनी शक्ति है? 100% ही। इसीलिए उनको स्वांश कहा जाता है। लेकिन क्या अंतर है? अपनी ही इच्छा से भगवान उन स्वरूपों में अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं करते। ये नहीं कि वो भगवान नहीं है या इनके पास शक्ति नहीं है, मैं पहले भी समझा चुका हूं, खाली रिवाइज करा रहा हूं। और विभिन्नांश का मतलब क्या है? कि गुणात्मक रूप से वे भगवान के ही जैसे है, सच्चिदानंद हैं, और भी भगवान के जो गुण है कुछ कुछ मात्रा में जीव में है, लेकिन वह भगवान के समान कभी भी शक्तिशाली हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये असंभव चीज है, हम कभी भगवान बन नहीं सकते। जो भगवान है वो भगवान है, और जो जीव है सो जीव है। मेक सेंस? ओके। इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात बोली है, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान स्वतंत्र हैं, ऐसे ही जीव भी कुंचित मात्र में स्वतंत्रता को प्राप्त है। और वो क्या स्वतंत्रता है? कि वह या तो माया की सेवा करे या वह कृष्ण की सेवा करे, और कोई स्वतंत्रता नहीं है। क्या स्वतंत्रता है विजय? या तो माया की सेवा करे और या फिर वह कृष्ण की सेवा करे। अब इसमें बहुत सारे रहस्य हैं। अगर हमें भक्तों का संग प्राप्त नहीं है, अगर हम सतगुण में नहीं रहते, तो हम माया, हमारे पास अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने की शक्ति नहीं रहती। ये सब पता नहीं समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही है, लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है। जब व्यक्ति भक्ति करता है तब उसको समझ में आता है कि अपनी स्वतंत्रता का वह कैसे सदुपयोग करे। आकाश, मेरी बातें समझ में आ रही हैं? परशुराम, आपको प्रसाद खाना चाहिए कि भोग खाना चाहिए? क्या उत्तर है परशुराम? आपका नाम परशुराम है? अभी आपसे प्रश्न करेंगे तो फिर उत्तर नहीं दे पाएंगे। आपसे भी प्रश्न करेंगे, आपका नाम भूल रहा हूं मैं अभी। परशुराम, आपको भोग खाना चाहिए कि प्रसाद खाना चाहिए? भोग मतलब जो खाना भगवान को अर्पित नहीं है। इसमें क्या मुश्किल है? प्रसाद खाना चाहिए, आपने कहा प्रसाद ही खाना चाहिए। दैट मीन्स एक डिवोटी होने के नाते हम समझ गए कि हमें क्या खाना चाहिए। क्या हम प्रसाद खा सकते हैं कि होटल में जाके भी खाना खा सकते हैं? आपका अपना परशुराम है? क्या परशुराम बताइए? मैं कह रहा हूं कि क्या हम होटल में जाके खा सकते हैं कि हम प्रसाद ही खा सकते हैं? क्या हम बाध्य हैं प्रसाद खाने के लिए? बाध्य समझते हैं? क्या हम मजबूर हैं प्रसाद खाने के लिए? नहीं समझ पा रहे हैं। आप बताओ, आप बताओ, आपका नाम भूल गए, नाम क्या है? नयानंद, क्या आप बाध्य हो प्रसाद खाने के लिए? अरे यार, आपको बुद्धि नहीं। हम लोग बाध्य नहीं है, बाध्य मतलब मजबूर नहीं है। होटल में भी खा सकते हैं और प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन भक्तों के संग में आकर के अब हमारे पास बुद्धि है कि हमें भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। आप समझ में आई बात? यानी कि स्वेच्छा तो हमारे पास है, लेकिन उस स्वेच्छा का कैसे उपयोग करना है ये भक्तों के संग में आके वो सीखते हैं। सुबह 4 बजे उठना चाहिए कि 10 बजे उठना चाहिए? 10 बजे उठना चाहिए। हम बाध्य नहीं है सुबह 4 बजे उठने के लिए, लेकिन अपनी स्वेच्छा का प्रयोग करना सीख रहे हैं ताकि हम भगवान की सेवा करना सीखें। ये कब हो पाता? जब भक्तों का संग करते, नहीं तो पता ही नहीं है। इज़न्ट इट? बाहर के लोगों को तो पता ही नहीं है कि कितने बजे क्या खाना चाहिए या नहीं चाहिए खाना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये बात बोल रहे हैं। अब इसे और क्यों स्वतंत्रता भगवान ने दी है? यदि हम स्वतंत्र ना हो तो हम भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। आकाश, आप समझ पा रहे बात? फॉर लव देर हैज टू बी इंडिपेंडेंस। तो इसलिए यह प्रश्न नहीं करना चाहिए, अरे भगवान ने हमें क्यों भेज दिया, अरे हमें स्वतंत्रता दी ही क्यों? नहीं तो हमारा भगवान से प्रेम हो नहीं पाता। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यष्टित्व और सूक्ष्म स्वातंत्र होता है। ये बातें समझ में आ रही हैं? उद्धव द्वार का दिश समझ में आया? व्यष्टित्व समझ में आया? आपको समझ में आया है क्योंकि आप ही बात ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपका ही नाम पुकारा है, मुरारी को नहीं बुला रहा हूं। अब मुरारी हंस रहा है, क्यों मुरारी हंस रहा है? क्योंकि मुरारी का नाम ले रहा हूं। आप क्यों नहीं हंस रहे हो? क्योंकि आपका नाम नहीं ले रहा हूं। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? कृष्णा, जब मैंने बोला कृष्णा तो कृष्णा हाँ हाँ कर रहे हैं। पांडे जी, आप देख रहे हैं बोला जा रहा है सबको, लेकिन एक व्यक्ति जिसका जो नाम है वही इसको हाँ 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 ना 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 कर रहा है। इसे कहते हैं व्यष्टित्व। मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं। समझ में आ रहा है? राम, राम नाम है ना, राम सुंदर, यस। इसे कहते हैं व्यष्टित्व। आपका व्यष्टित्व आपका एक स्पेशलिटी है। कृष्ण को आपकी व्यक्तिगत सेवा से एक विशेष सुख मिलता है। ये बहुत अद्भुत बात है, ये बड़ा सुंदर है। जूम में जब मैं किसी एक भक्त को देख तरफ मुस्कुराता हूँ तो बाकी सब लोग सोचते हैं ये प्रभु मेरी तरफ देखे मुस्कुरा, वो भी मुस्कुराने लग जाते हैं। हमने कहा ये तो हमने बहुत कुछ जगह तुम्हें कर दिया, कृष्ण भी ऐसे करते हैं। अभी मैं कल पढ़ रहा था कि द्वारका में सारी रानियां कृष्ण को खिलाने के लिए चलती हैं और हर रानी सोच रही है कि मैं खिला रही हूं सबसे पहले। ऐसे गोपियां भी सब दौड़ती हैं कृष्ण को खिलाने के लिए और हर गोपी यही देख रही है कि मैं ही खिला रही हूं, बाकी लोग नहीं खिला पा रहे और कृष्ण खा भी रहे सबके सब। तो जब जूम ऐसा कर सकता है तो कृष्ण क्यों नहीं कर सकता। कितना सुंदर आप सोचिए, आप कृष्ण संग बैठे हैं और आप ये देख रहे हो कि केवल कृष्ण मेरे से ही खा रहे हैं और देखो बाकी लोग से तो खा ही नहीं रहे। हम सब मान लो ग्वाल बाल हैं और कृष्ण की तरफ दौड़ रहे हैं, फर्स्ट कौन आएगा? हर आदमी फर्स्ट आएगा और बाकी सब लोग पीछे होंगे। मैं भी कृष्ण को पहले छूंगा, ये भी कुणाल भी छुएगा सबसे पहले और प्रभु जी भी छुएंगे और समुद्र प्रभु भी छुएंगे और सबको लगेगा कह रहे बाकी लोग तो पीछे रह गए। कृष्ण इतना प्रेम कर सकते हैं, इतना इतने पर्सनल हैं, तो कौन मायावादी बनना चाहेगा? मूर्ख होगा जो मायावादी बनना चाहे, ठीक है। और सूक्ष्म स्वातंत्र का मतलब क्या है? या तो हम कृष्ण के संग सेवा करना चाहें या फिर माया की सेवा करना चाहें। माया के पुरस्कार देती है जूता, जूता समझते हैं ना, जूते से मारता वो, और कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण प्रेम देते हैं, ठीक है। जो हम जूता खाने की स्वतंत्रता है या फिर प्रेम स्वीकार करने की। इसी स्वातंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उस उपयोग से वह मुक्त बनता है। ये लाइन समझ में आ रही है? ये सारी ट्रेनिंग किस लिए है? ये श्रवण क्यों किया जा रहा था? कि हम सीखें कि हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कैसे करते हैं। अगर हमने वैष्णव संघ किया है, भक्तों का संघ किया है, तो पहली चीज ये है कि इतनी अकल आ जानी चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर इतनी अकल नहीं आई है तो मतलब ये हमने ठीक से संघ किया नहीं। क्या खाना है, कब सोना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्या श्रवण करना है, ये सब अकल हमको आनी चाहिए। इसी के लिए भक्त सत्संग किया जाता है। और इसमें मुझे बहुत हंसी आती है, हम प्रभु जी के गांव में गए थे, एक व्यक्ति ने 35 भागवत कथा कराई, 35, और फिर भी रिसर्च चल रही थी कि भगवान कौन है। कैन यू इमेजिन? 3 घंटा गुणा 7 हो ना, 21 घंटे, 21 घंटे की एक कथा गुणा 35, कितना घंटे हो गए पता नहीं, 350-400 घंटे हो गए। 400 घंटे कथा सुनने के बाद व्यक्ति को ये रिसर्च चल रही है कि भगवान कौन है, मतलब रामायण हो गई, उसके पूछ रहे राम कौन है। तो ये आप देख सकते हैं कि यह है वैष्णव संघ नहीं हुआ, यह प्रवचन सत्संग नहीं हुआ। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। समझ में? मैं मन से तो नहीं बोल रहा था ना, प्रभुपाद बोल रहे हैं ना इस बात को कि जीव कभी भी सृष्टि नहीं है, उसका अस्तित्व हमेशा रहता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। इंद्रियां आध्यात्मिक होती हैं, भगवान के संग हमेशा रहकर सेवा कर रहा है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। मतलब वो भूल जाता है कि वह है कौन। क्या याद रहता है? मैं देवदत्त हूं, सोमदत्त का बाप हूं और मुझे ये सब काम करने हैं। यही याद रहता है कि नहीं? मैं राम सुंदर हूं, मेरे पिताजी ये हैं, मुझे नौकरी करनी है, 50,000 कागज के नोट छपवाने हैं और एक काम करना है, कटाक्ष तो हम करेंगे ही, आप जानते हैं। इसी में पूरा जीवन बीता जा रहा है। कौन कौन समझ रहा है कि मैं कृष्ण का भगवान का अंश हूं, मुझे भगवान के पास वापस जाना है। राजकुमार, आपके लड़के को आपके संग रहने में कुछ पेमेंट करना पड़ता है? आपके बच्चे जो है वो आपके संग रहते समय कुछ पेमेंट करने पड़ते हैं? ऐसे ही रह लेते हैं आपके संग? क्यों रह लेते हैं अपने से? अपने आपके बच्चे आपके संग आराम से क्यों रह लेते हैं? क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। सिंपल बात, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी के बच्चे को उसके संग रहने के लिए, अपने पिता माता के संग रहने के लिए कोई अधिकार, कोई योग्यता चाहिए? यही तो हम लोग गधे, मैं से शब्द यूज नहीं करना चाहता, हम गधों को समझ में नहीं आ रहा है, अब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि भगवान के धाम जाने की कोई योग्यता नहीं चाहिए, केवल इतना योग्यता होना चाहिए कि मुझे भगवान के धाम जाना है। ये सारी साधना इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको हम जाना चाहें। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम जाना ही नहीं चाहते, या एटलीस्ट इस जन्म में नहीं जाना चाहते, केवल कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी। अपने लिए कोई टाइम नहीं रहेगा, नो प्राइवेट टाइम फॉर माई सेल्फ, ये सब भावना हमारे मन में रहती, ये डर रहता। लेकिन भक्त बहुत उत्साहित रहता है। मैं आज बहुत उत्साहित था, हमने कहा कभी भी जाएं, जाएंगे तो ना इस जन्म में जाए, अगले जन्म में जाए, कहीं पे भी जाए, अपना काम है भक्ति करना। अब वो कब कृष्ण लेके जाएंगे वो उनके ऊपर है, और जिस दिन लेके जाएंगे उतनी तो एक सेकंड लगेगा। जिस दिन सोच लिया चलो भैया प्रेम कृष्ण को वापस लेके आना, बहुत हो गया, चलो चलो भाई वापस भेज देंगे, वे मान लेके चले जाएंगे खत्म। तो इतना चिंता क्या करना कब जाना है, हमारी चिंता ये है कि हमें कृष्ण की सेवा करनी। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। एक लाइन समझ में आ रही है, कृष्ण की सेवा को भूला हुआ है इसीलिए माया पिटाई कर रही है। कृष्ण की सेवा को मैं लग जाएगा तो माया छोड़ देगी तुरंत, एकदम एकदम सीधी विज्ञान है। जैसे मैं आज ये भक्त को समझा रहा था कि बेटा तू भजन करना चालू कर, भक्ति करेगा तो अब मैं देखना भौतिक जीवन बहुत आसान हो जाएगा। अगर तुम भक्ति इधर छोड़ दोगे, कहो कि मैं भौतिक जीवन को मैनेज करूं, तो माया के पास तुम्हारे मैनेजमेंट को तोड़ने की बहुत अच्छे मैनेजमेंट है। वो एक के बाद एक परेशानी देती रहेगी, वो परेशानी कभी समाप्त नहीं होती। अभी देखो मेरे पेट का प्रॉब्लम था, वो पेट का प्रॉब्लम समाप्त हो तो बुखार हो गया, अब बुखार का प्रॉब्लम हुआ तो कान का प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो यह प्रॉब्लम तो देती रहेगी, अगर इधर ध्यान देते रहेंगे तो कभी भजन नहीं कर पाएंगे। आप कहो कि ये सेटल हो जाए और ये बच्चे सेटल हो जाए और ये हो जाए और वो हो जाए, आप ही सेटल हो जाओगे, भक्ति सेटल नहीं होने वाले। माया का कार्य ही है कि लगातार एक के बाद एक प्रॉब्लम देती रहे, कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। मेक सेंस? न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश है। ये जानते हैं विष्णु मतलब भगवान के स्व अंश है, भगवान से भिन्न है। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं, यानी कि ब्रह्मा जी भी शिव जी भी सभी सब सनातन है। कर्षति यानी संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लौह श्रृंखलाओं से बंधा हो, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भव सागर की ओर धकेलता है। ये लाइन समझ में आई आपको? मन में भोग की इच्छा होती है, उस भोग को प्राप्त करने के लिए जीव प्रयास करता है और फिर से भोग के संस्कार बनते हैं और फिर उसके बाद उसको एक और शरीर प्राप्त हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं मन ही इस भव सागर में, जन्म मृत्यु रूपी सागर में बार बार जन्म का कारण है। ठीक। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे रहते हैं, जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनि में चला जाता है। ये कौन से अध्याय पढ़ा था हमने? 14वें अध्याय पढ़ा था। सतोगुण से सुख की और ज्ञान की उत्पत्ति होती है, रजोगुण में व्यक्ति बड़े बड़े कार्य करता है, दुख होता है, और तमोगुण में से पता ही नहीं कि करना क्या है, पूरा अंधकार में जीवन व्यतीत करता है। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो वह यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। इलाने समझ में आया? इसकी व्याख्या टीका में की गई थी कि हमारी ये भौतिक शरीर नष्ट होगा, स्थूल सूक्ष्म, फिर क्या हमको प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा रामचंद्र प्रभु? क्या प्राप्त होगा अगर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होगा, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जो उसके द्वारा हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। ठीक। माध्यान्दिनायन श्रुति में सूचना प्राप्त है। क्यों भाई, था ये श्लोक है कि नहीं? टीका में पढ़े थे कि नहीं? प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि नहीं? आउट ऑफ कोर्स तो नहीं बोल रहे थे? सवा एष ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम मर्तमिति उत्सृज्या ब्रह्मा विसंपद्या ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मणे विदम सर्वम अनुभवति। समझ में आया? याद आ रहा ना क्या बोला गया था? वह ब्रह्म होता है, उसकी आंखें भी ब्रह्म हो जाती हैं, उसके कान भी ब्रह्म हो जाते हैं, वस्तुतः उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है और भगवान की सेवा वो कर पाता है। ये वेद की बात है, मनगणत भावुकता की बात नहीं है। यहां यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वे भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। तो वह स्पष्ट है, समझाना नहीं है। यह उनके आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान हैं उन्हें समझ सकता है। जब वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास जाते हैं, नहीं, भगवान विष्णु के पास तो जाते ही हैं, भगवान विष्णु के पास जाते हैं बहुत सुंदर, और भगवान विष्णु जब बोलना शुरू करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उसे अमृत उड़ेला जा रहा है उसके कानों से। स्वागतम स्वागतम ऐसा करके भगवान बोलते हैं, गोप कुमार को बोलते हैं कि तुम स्वागत है, स्वागत है तुम्हारा, भगवान बोल रहे हैं। सोचिए, एक सिंपल सा शूद्र जीव भगवान के पास जाता है बहुत सुंदर बातें बोलते हैं, और वैसे बोलते हैं कि ऐसा लग रहा था कि बस अमृत उड़ेल रहे हैं। ऐसे ही भगवान श्री राम के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और थोड़ा संकोच कर रहे होते हैं, तो भगवान श्री राम कहते नहीं संकोच करने की जरूरत नहीं, और फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं तो अमृत अमृत उनको ऐसा लगता है। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं उसको कल्पना, मतलब आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते भगवान का अनुभव क्या है, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से, आचार्य की कृपा से हम सबको भगवान के धाम जाने का मौका मिलेगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है, ये सब बातें सुन करके हमारा प्रेरणा बनती है कि हम भजन करते रहें, भगवान के धाम पहुंचे। स्मृति में भी यह ज्ञात होता है, वसंत यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तया, ये भी कोट किया गया था ना, वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं, अभी तो बताया गया था इस बात को। जहां तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तार और अंशों में कोई अंतर नहीं होता। ये समझ में आया, मतलब भगवान के समान वो दिखाई पड़ते हैं, जैसे श्रीदामा श्रीमती राधा रानी की तरह दिखाई पड़ते हैं, उनके भाई हैं ऐसे करके। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, तो इसकी व्याख्या कर चुके हैं, ठीक है। ममे वांश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है कि भगवान के अंश, भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा हुआ खंड, इसकी व्याख्या किए थे ना हम लोग, ऐसा नहीं कि पत्थर को तोड़ तोड़ करके आपने जो है अंश बना दिया, उस पत्थर की अस्तित्व वह समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते, उसी प्रकार से भगवान को भी काटा नहीं जा सकता। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती, यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और पुनः जोड़ दो। समझ में आ रहा है, पत्थर को आपने तोड़ा फिर ग्लू से चिपका दिया, यह सब नहीं होता। ऐसी विचारधारा यहां पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है, विभिन्नांश सनातन है, मतलब कि जीव सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है, देही और अस्मिन यथा देहे, वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो वह आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। एक बात बताना चाहता हूं कि मतलब क्या है इसका, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता, हर जीव का भगवान से एक शाश्वत संबंध है, आप जानते हो, तो जिस उस संबंध के अनुसार जिस प्रकार से जीव सेवा करना चाहता है उसको वैसा स्वरूप दिया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझिए, जो जीव जिस प्रकार से कृष्ण की सेवा करना चाहता है उसका उसको उस प्रकार का शरीर दिया जाता है। मान लो मेरा स्वरूप मेढक का है, आप लोग अरे आप लोग हंसना चालू, मेढक है प्रभु जी, अरे इसीलिए बहुत टल टल कर रहे हैं आप। नहीं, अगर मेरी ये इच्छा है कि मेढक के रूप में मैं कृष्ण की सेवा करूं शाश्वत रूप से, तो मैं मेढक रहूंगा, लेकिन अगर मैं चाहूं कि मेढक से मतलब कुछ समय के लिए मेढक छोड़ करके मैं पेड़ बन जाऊं तो पेड़ भी बन सकता हूं, और फिर छोड़ करके मैं कहूं चक्र बन जाऊं तो चक्र, ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक ही स्वरूप में रहेंगे। मैंने कल भी समझाया था कि भगवान का चक्र जब चाहता है तो इंसान मतलब मानव रूप लेकर के वो उनको चामर भी डुलाएगा, और जब लोगों को मारना होगा चक्र बन जाएगा। आप लोगों को लगा प्रभु जी मतलब फेंकने के लिए यही समय को मिला है, हम फेंक नहीं रहे, फेंकना समझते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको भाई मतलब मनगणत बातें बोल रहे हैं मनगणत बात नहीं है ये सब बातें कॉमिक्स की स्टोरी नहीं है, ये सब शास्त्र के वचन है, समझ रहे ना मेरी बात। भगवान की कौमुद्र की गदा भी एक व्यक्ति है, एक जीव का स्वरूप रसगुल्ला भी हो सकता है, शाश्वत रूप से वो रसगुल्ला हो सकता है, लेकिन रसगुल्ला भी बोल सकता है। कहोगे प्रभु जी आप ये तो मतलब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, कहते ना आज मोला सारी बात हजम नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा है। आप जानते हो कि दामोदर लीला में दूध भी सोच रहा था, अरे यशोदा मैया का दूध पीते रहेंगे हमें कब पियेंगे, तो हम फालतू में तप रहे हैं, चलो हम आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये सब बातें आचार्यगण केवल भावुकता में नहीं बोल रहे हैं, आध्यात्मिक आकाश में हर चीज एक व्यक्ति है, घास भी एक व्यक्ति है, समझ रहे, पेड़ भी सब व्यक्ति हैं। समझ में आ रहा है, यानी कि जीव का जो शाश्वत भाव है भगवान के प्रति, उसके अनुसार उसको एक शरीर, जो अगर शरीर शब्द कहें या विग्रह स्वरूप प्राप्त होता है। समझ में आ रही बात, ये बात। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। मान लीजिए कि एक स्वर्ण का बहुत बड़ा समूह है, तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कोश है स्वर्ण का, या एक बहुत बड़ा पिंड कह लीजिए, और स्वर्ण का एक छोटा सा आभूषण है, तो उसमें भी तो वही गुण है जो स्वर्ण में। वही एग्जांपल है, समुद्र की बूंद समुद्र, महान अग्नि या चिंगारी, सूर्य की रोशनी या सूर्य। तो सूर्य की रोशनी सूर्य नहीं है, समुद्र की बूंद समुद्र नहीं है, चिंगारी एक महान अग्नि नहीं है, लेकिन उस सभी में थोड़े थोड़े गुणात्मक साम्यता होती है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मिले सकता हूं? बहुत सारे प्रश्न है, आज सारी आत्माएं जग गई लग रहा है। अच्छा, आत्मा और ईश्वर प्रकृति का क्या संबंध है और क्या ये तीनों ही सनातन है? बिल्कुल सही है, आत्मा सनातन है। अरे आप भाग कर रहे हो, सुनो पूरे, क्लास होना समाप्त हुई, आत्मा और कौन सनातन काम करने के लिए जा रहे हो? आत्मा सनातन है, ईश्वर यानी भगवान कृष्ण सनातन है, और प्रकृति भी सनातन है, लेकिन प्रकृति जड़ है, भगवान की शक्ति है, आत्मा भगवान की शक्ति है लेकिन जड़ नहीं है, और भगवान के जो सच्चिदानंद गुण है वह भी आत्मा में है। ठीक है, चलो प्रश्न का उत्तर दो, माइक दो आप संत से। आप तो जब प्रश्न होता है तो लोग उठना चालू करते थे, तो पता ही है सारे प्रश्न का उत्तर। चलो अगला प्रश्न करते हैं, बृहद भागवत मिथ हम कहां से पढ़ सकते हैं? वेदाबेस इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें फ्री है ये, उसके लिए अलग से आपको बता देंगे। क्या जीवात्मा बिना शरीर के रह सकती है? क्या उत्तर है साधु शरण प्रभु? रह सकती है, हाँ। अभी क्या उत्तर दिया था? नहीं। आत्मा भौतिक जगत में भौतिक शरीर लेके रहती है, ठीक है, और आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शरीर के साथ। अब प्रभु जी कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति में भी रह सकती है। देखिए ब्रह्म ज्योति में रह सकती है लेकिन वो उसका एक स्थायी स्थान नहीं है, वहां पर रहकर खुश नहीं रह सकती। ठीक है, आगे क्या पढ़े? मायावाद ब्रह्मवाद का हमने वर्णन कर दिया। उसके बाद जीव भगवान का अंश इसलिए कहलाता है क्योंकि, ठीक है ये भी इसकी व्याख्या कर चुके हैं। आध्यात्मिक शरीर क्या आत्मा से अलग होता है? इसको समझना बड़ा कठिन है क्योंकि देखिए आध्यात्मिक वास्तविकता का धारणा करना बहुत मुश्किल है। यहां पे आचार्यगण स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि एक आध्यात्मिक शरीर दिया जाता है और ये एक शब्दों की बनावट है। आध्यात्मिक जगत की सत्यता को शब्दों में समझाना बड़ा कठिन है, तो जो हम समझ सकते हैं उस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां आप कह सकते हो कि मेरा हाथ है क्योंकि मेरा हाथ जड़ है और मैं चिन्मय तत्व हूं, लेकिन अब वहां आपका हाथ कैसा है इसको समझना बड़ा कठिन है। इसलिए समझाने के लिए हमें बोला जा रहा है कि हमें आध्यात्मिक शरीर दिया जा रहा है और इसी कारण से द्वैतता पर आधारित प्रश्न यहां पर किया जा रहा है कि मैं और मेरा शरीर, क्या इस प्रकार का द्वैत आध्यात्मिक जगत में भी है? तो क्या उत्तर है? उत्तर है नहीं। तो फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भौतिक बुद्धि से हम ऐसे समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक शरीर दिया जाता है, वहां का चिन्मय शरीर आत्मा से भिन्न नहीं होता है, वहां पर इस प्रकार का भेद नहीं है कि मैं और मेरा शरीर। लेकिन इसको अनुभव हम तभी कर पाएंगे जब हमको वो मतलब प्राप्त होगा। ओके, क्या जीव नरक में भी भगवान की सेवा कर सकता है? हाँ, वो उसको अगर भक्त कर रहा है तो वह नरक में जाकर के हरे कृष्णा कीर्तन करके उनका उद्धार कर सकता है। ये प्रश्न एक थ्योरेटिकल प्रश्न है कि जो व्यक्ति, हमने क्या सुना था कल, जिसकी जीव ने एक बार भी नाम उच्चारण कर दिया वो कभी नरक नहीं जा सकता, तो ये प्रश्न पता नहीं क्यों आ रहा है, ऐसे कौतूहल में आ रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग अगर जाना भी चाहते तो यमराज जी के हाउस प्रोग्राम में जा सकते हैं और जाते भी है। नारद जी कभी एक बार गए तो नारद जी के शरीर से छू के जो हवा जा रही थी उसी से नरक के प्राणियों को उद्धार हो गया। दशरथ भी इसी प्रकार से, भगवान दशरथ जी भी उनके शरीर से जो हवा छू के जा रही थी उसी से उद्धार हो गया लोगों का। तो हाउस प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। जैसे कहो कि भक्त लोग जेल जा सकते हैं, हाँ जाते हैं प्रीचिंग करने जाते हैं, लेकिन अब ऐसा काम नहीं करते हैं कि जेल में जाके रहना पड़े, ठीक है ना। अरे पहले ये प्रश्न पूरा कर लेते, हाँ ऑनलाइन प्रश्न पूरा कर लेते। क्या स्व अंश भगवान के अंदर से आते हैं? बिल्कुल नहीं, यही मैं समझा रहा था कि ऐसा नहीं सोचना। देखिए ये थोड़ा समझा देता हूं क्योंकि शायद नए भक्तों को पता नहीं होगा। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लास दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि आप लोग मुझसे अलग हैं, हम लोग अलग अलग दिख रहे हैं ना। आप कुणाल तो नहीं हो, कुणाल है? आप कुणाल नहीं है, ये प्रेम कृष्ण है, ये नयानंद है, सब अलग अलग लोग हैं। तो जो विविधताएं दिख रही वो इसलिए दिख रही है क्योंकि अलग अलग जीव अलग अलग शरीरों में उपस्थित है, ये समझाया था ना। लेकिन भगवान इतने चमत्कारी हैं कि भगवान अपने आप को एक ही समय में एक एक सब जगह विस्तारित कर देंगे और वो एक ही व्यक्ति है। हाँ मतलब बहुत अद्भुत बात है, भगवान अपने को क्लास दे सकते हैं अगर चाहे तो। जैसे आप देख सकते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान अपने को ही हांक रहे हैं, वही बछड़ा बन गए, वही क्या कहते हैं बच्चे बन गए, वही कृष्ण है, वही सब एक्सपैंड कर लिया और अपने को ही हांक रहे हैं। ये तो चकित करने वाली बात है, इज़न्ट इट। तो ये जो भगवान के स्वांश हैं ये सब भगवान ही हैं एक ही समय में। इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनसे आए हैं निकले हैं, ऐसा नहीं, वह भी भगवान की तरह सनातन। अब क्यों है इसका थोड़ा मुझे समय दीजिए, क्योंकि कुछ जीव भगवान को श्री राम के रूप में ही देखना चाहते हैं शाश्वत रूप से, कुछ लोग भगवान विष्णु के रूप में देखना चाहते हैं, कुछ लोग वराह के रूप में देखना चाहते हैं। तो इस कारण से भगवान अपने आप को विभिन्न स्वरूपों में विस्तारित करते हैं, लेकिन यह मत सोचिए कि वह किसी समय में करते हैं, वो हमेशा इस प्रकार से रहते हैं। इंग्लिश में क्या हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा, जब जीव मुक्त हो जाता है तो क्या जीव को अपनी आध्यात्मिक शक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है जैसे योगियों को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं? ओके, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं बड़ा खुश हूं, क्यों खुश हूं कि बृहद भागवतामृत से सारे उत्तर धड़धड़ धड़धड़ दे सकता हूं मैं। तो वहां स्पष्ट लिखा है वैकुंठ में जाते ही सारी आध्यात्मिक सिद्धियां जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। कैन यू इमेजिन दैट, जो चाहो करना चाहते हो। मान लो आप कहो कि मैं मतलब मुक्त होने के बाद कि मैं पेप्सी में जॉब करूं, तो कर सकते हैं आप नहीं, कहने का मतलब यह है कि जो चाहो कर सकते हो आप। कहीं सिंपल सी बात सोचो, जो चाहो वो कर सकते हो। वैकुंठ में पहुंचने के बाद आपको ये अपने आप ही मिल जाता है, जो चाहो एनीथिंग। ऑब्वियसली आप भगवान की सेवा के अलावा कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन आप जो चाहे वो कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन दैट फ्रीडम, कुछ भी चाहो। अच्छा है कि हमें सिद्धि प्राप्त नहीं, क्योंकि बहुत बुरी बुरी चीजें भी चाहते हैं अभी, लेकिन कुछ भी चाहो, क्या फ्रीडम है, जो चाहो वो कर सकते हो। अब मैं आपको और बातें बोलूंगा तो दिमाग बाउंस कर जाएगा। गोप कुमार नारद जी को वैकुंठ में भी मिलते हैं, वो उनको अयोध्या में भी मिलते हैं और उनको वहां पर भी मिलते हैं, द्वारका में भी मिलते हैं। तो कहते ये क्या है? तो कहते जैसे भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं, ऐसे हम भी हर जगह अपने आप को विस्तार करते भक्त भी। जैसे अर्जुन हमेशा नित्य द्वारका में भी है और भगवान जहां लीला कर रहे हैं हर जगह जगह वहां पे भी है। सारे डिवोटी 70 लाख इधर बोलना, जो चाहे वो कर सकते हो। यस, और दूसरा प्रश्न है कि क्या सिद्ध लोग भौतिक शक्तियां ही रखते हैं? यस, उनके पास आध्यात्मिक शक्तियां नहीं होती। भविष्य में प्रभु जी ब्रह्म बृहद भागवतामृत पर कथा करने की यस ठीक है, करेंगे करेंगे। आप मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए जमा कर देना नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं, इच्छा है, समय है, होगा तो जरूर करेंगे। क्या जीव अपने प्रयास से भगवान के धाम पर जा सकता है? देखिए ये बहुत जरूरी है, जीव को अपनी तरफ से प्रयास करना होगा, लेकिन अपने प्रयास मात्र से भगवान के पास नहीं पहुंच सकता। हमने देखिए टीका में स्पष्ट पढ़ा था, भगवत संकल्प से उसको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन दोनों ही बातें हैं, हमें अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा भी नहीं होगी। आप जानते हो दामोदर लीला से दो बातें थी, भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि आपने हट कर लिया कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना ही है, तो आप ही जीतोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने सोच लिया कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मेरी जिद है, तो आप ही जीतोगे। ये इस लड़ाई नहीं कह सकते, इस कंपटीशन में भगवान पहले से हारे रहते हो, वो खाली बस देखते हैं कि कितना हट कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? इसे कहते हैं भृत्य वश्यता, यही दामोदर लीला में सिखाया। वो थोड़ा आपको वेट कराएंगे, लेकिन पहले हारे रहते हो कि मुझे भक्त से हारना ही है। तो अगर भक्त ने संकल्प ले लिया कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, चाहे कुछ भी, चाहे कितने जन्म लग जाए, तो आपको प्राप्त होंगे ही। मेक सेंस? आपकी जीत पहले से निर्णय हो चुकी है, आपका निर्णय पहले ही से हो चुका है, क्योंकि कृष्ण भी चाहते हैं कि आप अपने उनके पास वापस चले। धन्यवाद प्रभु जी, ठीक है, इसका उत्तर बताइए क्या दू ठीक है। और यहां पर किसी भक्त का प्रश्न था? नया माइक पे बताइए
ये यहाँ पे तो जो शरीर और आत्मा अलग अलग होता है,
हाँ।
पर आपने कहा वो मैंने पहले सुना नहीं, बहुत अच्छा लगा, इसलिए इसके और जानकारी चाहिए था। चिन्मय जगत में जो आध्यात्मिक शरीर मिलता है वहाँ पे,
हाँ, ये भेद नहीं होता है वहाँ पे, आत्मा और अपने शरीर का भेद नहीं होता है, वह शरीर भी पूरी तरह चिन्मय होता है। लेकिन फिर भी आप कहेंगे अच्छा वह शरीर मतलब वो शरीर आत्मा से अलग होगा, नहीं, वहां पे किसी प्रकार से गोप कुमार जाते हैं तो अपने शरीर के परिवर्तन को देखते हैं, एकदम पूरा स्पिरिचुअल, इट्स वेरी इनकंसीवेबल कि मतलब वो कैसा शरीर होगा, क्योंकि हम बार बार शरीर का उपयोग कर रहे हैं तो आप बार बार मन में यही आ रहा होगा कि ये शरीर, ऐसा जड़ शरीर नहीं है। अब कुछ चीजों का अनुभव या बहुत सारी चीजों का अनुभव जो है वो अनुभव के द्वारा ही हो सकता है, उसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। स्वयं गोप कुमार कहते हैं कि मुझसे अपराध हो रहा है क्योंकि वैकुंठ की बातों को मैं भौतिक शब्दों में कहने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन संभव नहीं। जैसे कहो कि कृष्ण का चरण कैसा है, कमल जैसा, ये एक अपराध है, कमल कभी कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन अब हम लोग को यही समझ में आता है कमल, तो इसलिए बोल के काम चला लेते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है? स्टॉप हियर। श्रीमद भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद।